हरे कृष्णा। आज राम नवमी के अवसर पर इस उत्सव में आप सबका स्वागत है। हम कुछ प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। यहाँ पे एक श्लोक लिखा है, हम श्लोक को दोहराएंगे। मैं पहले उसका अर्थ बताता हूँ, फिर उसके बाद में हम वो श्लोक दोहराएंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिराम, नहीं पहले अर्थ बताता हूँ। लोकाभिरामं, राम मतलब जो आनंद देते हैं, लोकाभिरामं मतलब हर तरह से सब लोगों को जो आनंद देते हैं, रणरंगधीरं जो रणभूमि में रंग मतलब लीला के समान वो रणभूमि में कार्य करते हैं और हमेशा धीर रहते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, राजीव नेत्रम उनके जो आंखें हैं कमल के समान है, और रघुवंशनाथम वो रघुवंश में प्रकट हुए हैं और उस वंश के वे स्वामी हैं। कारुण्य रूपम करुणाकरम त्वम, कारुण्य रूपम जो प्रभु श्री रामचंद्र का रूप है वो करुणा से पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए उनसे याचना कर रहे करुणा करम तुम, हे प्रभु आप करुणा के सागर हो, कृपया मुझ पे आप करुणा कीजिए। कारुण्य रूपम करुणा करम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, ऐसे श्री रामचंद्र भगवान को हम शरण जाते हैं। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए आप। लोकाभिरामं रघुवंशधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्य रूपं करुणाकरं तम् कारुण्य रूपं करुणाकरं तम् कारुण्य रूपं करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये कोई दोहराना चाहेगा
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रशरणं प्रपद्ये
वैष्णवी माताजी
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये
हरे कृष्ण। तो आज के इस प्रवचन में और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज का जो प्रवचन है हम चार विभाग में लेंगे। सबसे पहले हम जो अवतार का तत्व है वो तो तत्व ज्ञान के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, और फिर हम प्रभु श्री रामचंद्र की कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो प्रभु श्री रामचंद्र की लीलाओं के द्वारा जो एक भारत में आदि काल से एक संस्कृति चली आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये अंत में हम ये रामलीला का रामनवमी का हमारे जीवन से क्या संबंध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में चौथे अध्याय में भगवान ये बताते हैं कि वे इस जगत में बार बार अवतार लेते हैं। तो जो चौथे अध्याय के छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ये पांच श्लोक जो है ये अवतार के तत्व का रहस्य समझाते हैं। तो वहां पे भगवान बताते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। कहते हैं कि जब भी अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की ग्लानी होती है, तब मैं प्रकट होता हूँ। और वे प्रकट क्यों होते हैं इसका वो पहले बाह्य कारण बताते हैं और फिर अगले सातवें श्लोक में जो भी बताया, आठवां श्लोक जो है उसमें बाह्य कारण बताते हैं और नौवें श्लोक में अंतरंग कारण बताते हैं। तो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वे कहते हैं कि मैं आता हूँ जो सत्पुरुष साधु व्यक्ति है उन सबको उनके दुखों से मुक्त करने के लिए, और जो दुष्कृति लोग हैं जो इस संसार में आतंक और विध्वंस कर रहे हैं उनका विनाश करता हूँ। और इतना ही नहीं करता, मैं धर्म की स्थापना करता हूँ ताकि लोग सही मार्ग पे अग्रसर रह चुके। संभवामि युगे युगे, युग युग में इस तरह से मैं आते रहता हूँ। तो यह एक प्रकार का अवतार का उद्देश्य है। अवतार शब्द का अर्थ है अवतरति इति अवतार, जो आध्यात्मिक जगत में सनातन काल से भगवान उस रूप में प्रकट रहते हैं पर वो कभी कभी किसी युग में इस भौतिक जगत में आ जाते हैं और भौतिक जगत में वो धर्म की स्थापना करते हैं। पर धर्म की स्थापना भौतिक जगत में करने से भी एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस अवतार का। क्या उद्देश्य है वो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वे कहते हैं कि वास्तव में मैं क्यों आता हूँ इस जगत में, धर्म शांति या व्यवस्था स्थापित करना ये एक उद्देश्य है, पर उससे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि इस जगत में जो जीवात्माएं हैं उनको मेरी ओर आकर्षित करके मेरे धाम ले जाना, यह वास्तविक उद्देश्य है भगवान का। क्योंकि इस भौतिक जगत में हम कितना भी प्रयास करेंगे फिर भी ये भौतिक जगत दुखालय ही है, दुख का ही जगह है ये, और इसका कोई भी निवारण नहीं कर सकता है। दो तीन साल पहले जो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ये एक बहुत बड़ी संस्था है, सारे विश्व भर में इसके अनेक केंद्र है और करोड़ों करोड़ों रुपए में वो खर्च करते हैं वो दुनिया अच्छी बनाने के लिए। तो 204 में उनका 60वीं शताब्दी थी, तो उसका जो बड़ा कार्यक्रम पुणे में हुआ था तभी मुझे वहाँ पे कुछ प्रवचन देने के लिए बुलाया था। तो वहाँ पे वो जो यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष थे वे बता रहे थे कि 60 साल पहले लगभग जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई तो उस समय जो दूसरा द्वितीय महायुद्ध हुआ था वहाँ पे बहुत विध्वंस हुआ था और सबकी इच्छा थी कि अभी हमें ऐसा युद्ध नहीं चाहिए, अभी हम इस जगत को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो वे बता रहे थे कि 60 साल हमारे संयुक्त राष्ट्र के लाखों लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हमारे सैकड़ों सैकड़ों संस्थाएं हैं, उनके सैकड़ों सैकड़ों केंद्र है और करोड़ों की मात्रा में पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, पर जो 60 संस्थाएं बनाई थी यूनाइटेड नेशंस ने कि संयुक्त राष्ट्र ने कि हम अलग अलग जगहों में हम जो लोगों की स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं, वो कह रहे थे कि वो 60 संस्थाओं में जो लोगों की परिस्थिति अब है वो 1944 से और खराब ही हुई है, और एक भी क्षेत्र में उन्नति नहीं हुई है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि कैसे कह सकता है कोई उन्नति नहीं हो रही है, अभी अच्छे रोड आ रहे हैं, हवाई जहाज आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, तो ये सब है, पर ये उन्नति जो है ये केवल बाह्य है। हम बाह्य रूप से और नियंत्रण कर सकते हैं कुछ चीजों पे, पर उसके बावजूद जो अंतरंग नियंत्रण जो है, शांति और संतुष्टि जो है, ये बाह्य चीजों से नहीं आती है। बाह्य चीजों से मनोरंजन मिल सकता है। तो अमेरिका के इतिहास में कई बार ऐसे हुआ है कि भारत में कई बार इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पर अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी जाना बड़ा बहुत दुर्लभ है, होता नहीं ऐसे कभी। पर दो बार ऐसे अमेरिका के इतिहास में हुआ है, और जो 8 घंटों के लिए ऐसे हुआ था वो 8 घंटों में बहुत से लोग बैठे थे, भी टीवी नहीं है, उस समय फोन भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था, फोन भी नहीं है, करे कंप्यूटर भी नहीं है, क्या करे? तो मन खाली है और मन कुछ कर नहीं सकता, तो वो जो 8 घंटों का समय था वो दुनिया के इतिहास में सबसे अधिक आत्महत्या का समय था। कि वास्तव में कोई समस्या नहीं है, पर वास्तव क्या है, जो मन इतना पीड़ित है तो मन की पीड़ा को भूलने के लिए हम बाहर से कुछ मन को मनोरंजन देने का प्रयास करते हैं, और बाहर का मनोरंजन चला गया तो फिर क्या होता है, मन पूरा खा लेता है। तो इसीलिए वास्तव में मन की शांति और संतुष्टि चाहिए तो बाह्य उन्नति से कुछ ज़्यादा प्रगति नहीं होती है। उसके लिए हमें अंतरंग शुद्धिकरण और अंतरंग भगवान से संबंध जोड़ना जरूरी है, जो कि भक्ति से संभव है। तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि इस भौतिक जगत को हम ज़्यादा परिवर्तित नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत और अच्छा बना सकते हैं, पर यह दुखालय है। पर इसका मतलब नहीं है कि हमें निराशावादी बन जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आप आशावादी बनो, पर इस तरह से आशावादी बनो कि जिससे आपकी आशा सत्य हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं 100वीं मंजिल से नीचे कूदूंगा और मैं आशावादी रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो ये आशावाद मूर्खता है। तो वास्तव में आशावाद उस दिशा में होना चाहिए जिससे कि वो आशा सत्य हो सकती है। तो इसीलिए वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि हमें आध्यात्मिक प्रगति में रुचि रखनी चाहिए। तो भारतीय संस्कृति जो है सनातन काल से आध्यात्मिक प्रगति पर बहुत जोर दे रही थी, क्योंकि उसके द्वारा ही अंतरंग आनंद मिलता है, उसके द्वारा ही वास्तविक संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आपके भक्ति का की वृद्धि करने के लिए मैं इस जगत में अवतार लेता हूँ। तो भगवान आते हैं और बहुत ही सुंदर लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं में वो दिखाते हैं कि कैसे वे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, और वे हमें आमंत्रण देते हैं कि आप भी मेरे भक्त बन जाओ, और अगर आप मेरे भक्त जाओगे तो आप बन जाओगे तो आप भी मेरे साथ इस प्रेम के जीवन में, प्रेम के जगत में प्रवेश करके सदैव आनंद प्राप्त कर सकते हो। तो ये अगर उद्देश्य पूरा करना है तो इसमें क्या व्यत्यय है और उनके पारे कैसे जाना है, ये अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। तो 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कि आप मेरी और मेरे जन्म और कर्म को समझ जाओगे तत्वतः। तत्वतः समझना क्या है, हम थोड़ी देर में देखेंगे उसको। तो अगर समझ जाओगे तो आप मेरे पास लौट के आ जाओगे। तो फिर ये समझने में क्या व्यत्यय है, ये अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूतामद्भावमागतः। वे कहते हैं कि 3 समस्याएं आती है इस भौतिक जगत में, हम अगर भगवान को समझना है, भगवान की शरण जाना है। क्या है, वे कहते हैं उन तीनों से हमें मुक्त होना है, वीत होना है, मुक्त होना है। क्या है, राग भय और क्रोध। वीत राग भय क्रोध। राग का मतलब क्या है, आसक्ति। मराठी में राग होता है क्रोध, पर वो राग अलग है। वास्तव में इस ये राग से वो राग भी आ जाता है, जब आसक्ति हो जाती है तो क्रोध भी आ जाता है, पर राग का अर्थ है आसक्ति। तो अगर आसक्ति है इस भौतिक जगत से तो व्यक्ति को क्या लगता है कि यह जगत इतना अच्छा है, भगवत धाम में क्यों जाना है, यहीं पे मैं सुखी हूं। प्रभुपाद जी जब भारत में प्रचार कर रहे थे तो वो बोला करते, वो अपना उन्होंने छोटी सी किताब बनाई थी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, दूसरे लोगों की सुलभ यात्रा। और वो जब ग्रंथ बांट रहे थे तो प्रभुपाद जी ने बताया, एक कॉलेज प्रोफेसर से मिले थे कि आप अगर ये ज्ञान को समझ लोगे, भक्ति का अनुशीलन करोगे तो आप भगवत धाम जा सकते हो। तो फिर व्यक्ति सुनने लग गया, मैं वापस आ सकता हूँ क्या? तो व्यक्ति क्या सोचते हैं कि ठीक है, वहां पर जाना है तो सैर के लिए जा सकते हैं, पर यही असली जगत है। तो यह जो भाव है राग, ये तो गीतों में भी आता है, जीना यहाँ मरना यहाँ और जाना कहाँ। वास्तव में यहाँ पे हम ज्यादा रह नहीं सकते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में हम भ्रमण करते रहते, कुछ शाश्वत नहीं है। पर जब राग होता है, ये लगता है कि भौतिक जगत ही सुख की जगह है, तो भगवान में विश्वास भी हो तो भी क्या लगता है, भगवान तुम वहां पे खुशी रहो और तुम मुझे योजना करो कि मैं यहाँ पे खुशी रहूं। तो इस तरह का जो भाव है वह कभी यशस्वी नहीं हो सकता है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सब लोगों को बूढ़ा होना है, सब लोगों को बीमार होना है, सब लोगों की मृत्यु होनी है, यह अनिवार्य है। तो अगर ये भ्रांत धारणा है कि मैं यहीं पे सुखी हो सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सुख है और इससे मैं आसक्त रहूंगा, तो फिर ये पहली समस्या है। और दूसरी समस्या भगवान कहते हैं भय। तो भय किस चीज का? ये साधारण भय नहीं है कि हम अंधेरे में चल रहे हैं तो कोई आक्रमण, कोई चोर आएगा, कोई डकैत आ जाएगा, वो भय की बात नहीं कर रहे भगवान। ये भय क्या है? व्यक्ति सोचता है कि इस भौतिक जगत में इतना दुख है, तो ये दुख कहाँ से आ रहा है? ये कार्यों से आ रहा है, संबंधों से आ रहा हूँ। हम कार्य करते हैं, कुछ उससे इच्छा करते हैं कि मैं सुख मिलेगा, पर उसी कार्य से दुख मिलता है हमको, उसी कार्य से परेशानी हो जाती है। हम क्रिकेट मैच देखते हैं सुखी हो जाएंगे इसलिए, और जब भारत हार जाती है तो वो क्रिकेट मैच से ही दुखी हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम हर एक कार्य में देखते हैं कि जब हम सुख का प्रयास करते हैं दुख मिलता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भी सारे कार्य को छोड़ दो, सारे जो गुण हैं, गुण हमें आकर्षित करते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा दिखता है, कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, तो उनके गुणों से हम आकर्षित हो जाते हैं और फिर उनसे संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं, और फिर वो जो संबंध टूट जाते हैं गलत फहमी के कारण या मृत्यु के कारण या जो भी, तो बड़ा दुख हो जाता है। तो उसके कारण कुछ लोग सोचते हैं कि ये संबंध और कार्य, इनके झंझट में पड़ना ही नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और अधिकांश लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य भी क्या है? शांति शांति शांति। और सोचते हैं कि वो एक रोशनी है, रोशनी में जाके लीन होना है और वहां पर जाके शांत हो जाऊंगा मैं। पर वास्तव में ये शांति है, शांति हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती है। अगर बहुत परेशान हो कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी को बहुत बीमारी है, और अगर बहुत बीमारी है तो आर्थराइटिस जैसे कोई बीमारी है, तो थोड़ा सा भी हाथ ही लगा दर्द होने लगता है, थोड़ा सा खांसता भी है तो छाती में दर्द होने लगता है। तो तभी व्यक्ति सोचता है कि मैं सारा कार्य अगर बंद कर दूंगा तो फिर मैं दर्द से मुक्त हो जाऊंगा। तो उस समय उस व्यक्ति की क्या इच्छा होती है? मुझे दर्द से मुक्त होना है अभी, और इसीलिए कार्य त्याग कर देना है। पर वास्तव में बिल्कुल हिलना चलना सब कुछ बंद करना नामुमकिन है, और भले ही ऐसे कर लिया तो थोड़े समय के लिए राहत मिल जाएगी, पर जैसे ही दर्द चला जाएगा, राहत मिल जाएगी, तो उसके बाद में क्या इच्छा होगी? मुझे कुछ कार्य करना है, मैं कब तक ऐसा निष्क्रिय बैठा रहूं? तो यहाँ पे इस व्यक्ति की गलती क्या है? वह उसकी गलती यह है कि वो समझ रहा है कि मेरे हाथ पैर हिलाने से मुझे दर्द हो रहा है। वास्तव में दर्द हाथ पैर हिलाने से नहीं हो रहा है, शरीर में जो बीमारी है उससे दर्द हो रहा है। तो शरीर में बीमारी है इसीलिए जब हाथ पैर हिलाते हैं तब दर्द होता है, अगर शरीर तंदुरुस्त है तो हाथ पैर हिलाने से दर्द नहीं होता है। तो उसी तरह से जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, निराकारवादी लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जो भी कार्य करता हूं उससे दुख मिलता है, तो मुझे निष्क्रिय हो जाना है, कार्यहीन हो जाना है। पर जो कार्यहीन व्यक्ति होना बड़ा मुश्किल है, और अगर हो भी गए तो उसमें ज्यादा संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है कुछ कार्य करते रहना सदैव। तो इसीलिए ये जो भय क्या है, इस भौतिक जगत में संबंधों कार्यों से हमको अगर दुख मिलता है तो हम सब संबंधों सब कार्यों से डर जाते हैं, तो फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो संबंध जोड़ते हैं उनसे दुख मिलता है। पर भगवान से अगर हम संबंध जोड़ते हैं तो उस संबंध से तो आनंद ही आनंद है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। तो जैसे दर्द का कारण क्या है? हाथ हिलाना नहीं है, वो शरीर के अंदर बीमारी है। तो उसी तरह से इस दुनिया में अगर हमको दुख मिल रहा है, वो संबंध दुख का कारण नहीं है, गलत जगह में हम संबंध डाल रहे हैं वह दुख का कारण है। अगर भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो वह परम आनंद का कारण है। और तीसरा व्यत्यय भगवान बताते हैं, तो पहला हो गया राग, दूसरा है क्रोध, सॉरी भय, तीसरा है क्रोध। ये क्रोध क्या है? ये क्रोध ऐसे नहीं है कि किसी पे हम चिल्ला देते हैं। वास्तव में ये क्रोध क्या है कि लोग कभी कभी अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, अलग अलग संस्थाएं में जाते हैं, अलग अलग लोगों के प्रवचन सुनते हैं, और साधारणतः अगर सुनते हैं ये सही बोल रहा है, दूसरे प्रवचन ये भी सही बोल रहा है, तीसरे में जाके वो भी सही बोल रहा है, पर ये सब अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, तो इसमें से सही क्या है? और सोचते हैं वास्तव में ये सब लोग जो है ये सिर्फ शब्दों का खेल कर रहे हैं और उसमें कुछ सत्य है ही नहीं। मैं ये अध्यात्म क्या है ये जानने की झंझट में पड़ूंगा ही नहीं। तो क्या होता है वो सत्य क्या है समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए क्रोध में आ जाते हैं कि मैं समझ नहीं पाऊंगा। और अगर इस तरह से वो क्रोध में आ जाते हैं तो वास्तव में अध्यात्म कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं। तो शब्दों का खेल वास्तव में कोई भी कर सकता है। मानव बुद्धि को भगवान ने शक्ति दी है कि कोई भी चापल्य कर सकता है शब्द का, पर वह व्यक्ति कोई प्रवचन दे रहा है कोई संदेश दे रहा है तो कितना शास्त्रों के अनुसार है ये देखना है। तो जो शास्त्रों का आश्रय नहीं ग्रहण करते हैं वो क्या होता है मोहित हो जाते हैं, और मोहित होने के कारण क्रोधित हो जाते हैं, सोचते हैं कि आध्यात्म के झंझट में पड़ूंगा ही नहीं, कौन सा मार्ग सत्य है कौन सा मार्ग असत्य है कुछ पता नहीं मुझे। वास्तव में जो अगर भगवान हमारे हृदय में है और अगर हम सही में है सदमार्ग में आना चाहते हैं तो भगवान स्वयं हमें ले जाएंगे, स्वयं हमें प्रामाणिक गुरु के पास ले जाएंगे। तो इसीलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो प्रभुपाद जी अमेरिका में जाने के पहले उनके कुछ दो तीन शिष्य थे जो बाद में हयग्रीव प्रभु कीर्तनानंद महाराज वगैरह बने, तो तभी पहले हॉवर्ड और कीथ थे। तो वे भारत में आए, वो सोचते थे कि मुझे एक गुरु चाहिए, और भारत में बहुत कुछ ढूंढा उन्होंने। तो वास्तव में वो जब उन्होंने पहले थोड़ा भगवद्गीता पढ़ा था कुछ बौद्धिक ग्रंथ पढ़े थे तो सोच रहे थे कि सारे पूर्व के धर्म है वो ये क्यों कहते हैं कि सारा जगत दुखालय है, सिर्फ सुख है। पर वो जब बॉम्बे में उतरे और बॉम्बे के लोकल को देखा तो फिर समझ गए दुखालय क्यों है ये। तो क्या है जो पाश्चात्य संस्कृति है इस जगत के दुख को ढक देती है। अगर अस्पताल में भी जाएंगे हम पाश्चात्य देशों के अस्पताल में अगर जाएंगे तो अस्पताल भी 5-स्टार होटल जैसा लगता है और वहां पे सब दुखों से भरा है पर दुख कहीं दिखाई नहीं देता है, पर ये दुख है। तो वे भारत में आए और भारत में अलग जगह पे गुरु ढूंढने लग गए, और उन्हें बहुत जगह पे गए, वो हरिद्वार गए और बहुत से दक्षिण भारत में गए जगह पे, और देखा कि जो लोग बहुत जो गुरुगण थे वो इंग्लिश जानते ही नहीं थे, तो वो तो अमेरिका थे उनको सिर्फ इंग्लिश आता था तो कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त किया, और जो लोग इंग्लिश जानते थे वो उनको लग रहा था कि ये कोई आध्यात्मिक है ही नहीं, ये वास्तव में खुद खुद का खुद के अनुयायी प्राप्त करना चाहते, तो हताश होकर चले गए वो। फिर अमेरिका चले गए और भगवान उनके हृदय में थे, भगवान देखे थे प्रामाणिक इच्छा है, तो जिस नाव से वो आए थे उसी नाव से बाद में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, और अमेरिका में पहले प्रभुपाद जी बटलर में गए। प्रभुपाद जी बड़े ही दृढ़ संकल्प था, अकेले 70 साल के जब थे अकेले बिना किसी पैसे के बिना किसी जानते हुए व्यक्ति के बिना किसी संस्था के अकेले चले गए अमेरिका, और उनका विश्वास था कि भगवान कृष्ण का संदेश मुझे देना है तो भगवान कृष्ण योजना बना देंगे। तो अमेरिका में एक छोटा सा गाँव था, बटलर में रहे कुछ समय के लिए, उसके बाद में न्यूयॉर्क में चले गए। अभी उस समय प्रभुपाद जी अकेले थे और एक छोटे से घर के लॉफ्ट में वो रह रहे थे, और उस समय उनको प्रचार करने के लिए कोई सहयोगी नहीं थे और कोई जगह भी नहीं थी। तो प्रभुपाद जी को प्रचार करना है तो प्रचार कैसे करेंगे, अगर कोई बड़ा कार्यक्रम है तो उनको जानकारी देनी होती लोगों की, अभी रामनवमी है आप आ जाओ, तो हम कभी कुछ नोटिस बनाते हैं अनाउंसमेंट करते हैं, तो प्रभुपाद जी के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो वो क्या कर रहे थे, उनको अगर जानकारी पहुँचानी है तो एक ही मार्ग था, क्या था, वो खुद न्यूयॉर्क के सड़कों पे अपनी भीड़ बैग लेके भगवे कस्त्रों में घूमते थे। जैसे कि अगर कोई न्यूयॉर्क में होगा जो आध्यात्मिक ज्ञान चाहता है तो वो ज़रूर आ जाएगा, मैं देख लेगा। तो कई घंटों तक प्रभुपाद जी ऐसे रस्तों पे घूमते थे, कोई होगा क्या। तो ये जो हॉवर्ड थे वो वहाँ पे आ गए तभी, और वो रस्ते से जा रहे थे और तभी अचानक उन्होंने बड़ा रास्ता था दूसरी ओर देखा तो वहाँ पे उनको साधु दिख गए। अमेरिका साधु कैसे आ गए, मैंने कुछ नशा वगैरह किया है कि आप साधु कैसे दिख रहे हैं। तभी एक ट्रक आ गया बीच में से, सोच रहे थे ट्रक चला जाएगा क्योंकि वो रास्ते के इस बाजू में थे और वह दूसरे रास्ते के दूसरे बाजू में थे प्रभुपाद जी, वो सोचे थे ट्रक चला जाएगा तो फिर ये साधु नहीं रहेगा क्योंकि मेरा कल्पना है ये, और वो ट्रक चला गया और साधु वहीं पे थे वो, और फिर एक और ट्रक आ गया और फिर बाद में वो भी चला गया। तो अभी देखा किसी प्रभुपाद जी ने भी उनको देख लिया कि ये मेरी ओर देख रहे थे, प्रभुपाद जी भी रुक गए थे, तो फिर तुरंत वो दौड़ते हुए क्रॉस करके चले गए। और फिर उन्होंने तुरंत उनसे पूछा कि क्या भारत से है, बोले हाँ, और आप, नहीं मैं भारत से नहीं, मैं भारत गया था। तो फिर तो प्रभुपाद जी पूछने लगे कि आप भारत क्यों गए थे, और तभी अचानक एक जो ट्रक था उनके एकदम बाजू से चला गया, तो जो हॉवर्ड नौजवान थे एकदम डर गए और वो बाजू को कूद गए। हाँ, प्रभुपाद जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बड़े शांति से उनकी ओर देख रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति वास्तव में ये न्यूयॉर्क की सड़कों में नहीं है, इस व्यक्ति की चेतना कहीं और ही है, वहाँ पे ऐसी स्थिरता मिल गई उसको कि यहाँ पे जो भी हो रहा है उससे कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है। और फिर वो कुछ सवाल पूछे और जो जवाब मिल गया, उसके बाद में प्रभुपाद जी वो उनके सब मित्र लेके आए उनको, और फिर प्रवचन शुरू हो गया और इस तरह से हरे कृष्ण आंदोलन शुरू हो गया। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो एक टॉमकिन स्क्वायर पार्क नाम की जगह थी, वहाँ पे एक झाड़ी एक बगीचा था, वहाँ पे एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए प्रभुपाद जी और वहाँ पे कीर्तन करने लग गए। अभी अमेरिका में कीर्तन क्या है किसको पता नहीं है, कीर्तन किसका चल रहा है वो भी पता नहीं है, पर इतना मधुर कीर्तन था, प्रभुपाद जी इतने भक्तिभाव से कर रहे थे, तो क्या हो गया, लोग आ गए। अब प्रभुपाद जी के कुछ दो तीन उस समय शिष्य नहीं थे लगभग, वो दीक्षा भी ली थी पर शिष्य क्या होता है वो उनको पता भी नहीं था, पर वो उठ के नृत्य करने लग गए। अब प्रभुपाद जी आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे थे और लगभग एक घंटे तक उन्होंने कीर्तन किया, और जब कीर्तन आंखें खोले तो लगभग 200 लोग उस पूरे बगीचे में कीर्तन में नाच रहे थे। और आज भी अभी वो टॉमकिन स्क्वायर पार्क में अमेरिका में वो जगह है, और वो जो पेड़ है अमेरिकन सरकार ने उस पेड़ का नाम दिया है हरे कृष्णा पेड़, हरे कृष्णा ट्री। और वहाँ पे उन्होंने ऐसे नोटिस लगाई है कि जो विश्वव्यापी हरे कृष्णा आंदोलन है उसकी शुरुआत इस पेड़ के नीचे हुई थी। तो वास्तव में जो अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिकता से भगवान की खोज करता है तो भगवान उस व्यक्ति को एक गुरु के पास ले जाते हैं और गुरु को उस व्यक्ति के पास ले आते हैं। तो इसीलिए जो क्रोध है कि मैं झंझट में पड़ूंगा नहीं, क्या है पता नहीं मुझे, ऐसा भाव जो है उससे हम खुद को फंसा देते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं इन तीनों चीजों से बचना है, राग क्रोध और भय। और फिर क्या करना है, मन मया माम उपाश्रित, आपका मन मुझ में लगाओ, मेरा आश्रय ग्रहण करो। अगर ऐसा करोगे भावो ज्ञान तपसा, बहुत से लोग पहले ही ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध हो गए, पूता मद्भाव मांगता, वो मेरे धाम आ चुके हैं, भगवान में आश्वासन दे रहे हैं। तो इस भौतिक जगत के परे भगवान का धाम है, परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातनः यह सर्वेश। भगवान कहते हैं कि ये जो सारी जगत है नश्यत्सु अविनश्यसि, ये भौतिक जगत में सारा नाश होता है पर वो आध्यात्मिक जगत नाश नहीं होता है। तो वहां पे हमें ले जाने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं, और जब यहाँ पे आते हैं तो हम सब शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा के स्तर पे असली आनंद है, पर दुर्भाग्यवश हम शरीर के स्तर में जी रहे हैं। तो उपनिषदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में कठ उपनिषद में वर्णन आता है कि किस तरह से हम सब हमारे शरीर की तुलना एक पेड़ से की गई है, समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशेषो च्युति मोह्यमानः युष्टम यदा पश्यत्यन्नमीशमस्य महिमानामिति वितशोकः। तरह कि एक सुंदर पेड़ है और उसमें दो पंछी है, और उनमें से एक पंछी जो है वो इधर अपनी चोंच डाल रहा है, उधर अपनी चोंच डाल रहा है, और जो भी दिखता है वो खाने का प्रयास कर रहा है, और जब ऐसे खाते जाता है तो अधिकांश जो फूल है वो स्वाद रहित है, कटु है, कड़वे है, और बड़ा उदास हो जाता है। और दूसरा एक पंछी है वो देख रहा है क्या हो रहा है, वो खा नहीं रहा है, सिर्फ इस पंछी को देख रहा है। तो ऐसे बताया गया शास्त्रों में कि जो खाने वाला पंछी जो है वो हम सब है, आत्मा है, और जो देखने वाला पंछी है वो परमात्मा है। तो परमात्मा सदैव हमारे साथ रहते हैं और देखते हैं, पर वो देखने से ही संतुष्ट नहीं होते, तो सोचते हैं कि आत्मा का मुझे उद्धार करना है, उसको सद्मार्ग पे लाना है। तो इसीलिए वो अंदर अभी है हमारे हृदय के, तो अदृश्य है वो, तो इसीलिए वो इस दृश्य जगत में आ जाते हैं अवतार लेके। तो अवतार जब भगवान लेते हैं तो इस भौतिक जगत में बहुत मनोरम लीला करते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जो हजारों हजारों साल पहले जब आए थे तो उन्होंने अपने भक्तों के साथ इतनी सारी लीलाएं की है कि पहले वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा, पर उसके बाद में बहुत से ग्रंथ लिखे गए जिसमें उनकी लीलाओं का विस्तारित रूप से वर्णन आता है। और अगर हम देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है और साधारण कोई हिंदी मूवी होता है उसकी कहानी है, वो एक तरह से समान है। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है और एक विलन होता है, और जो विलन होता है वो हीरोइन पे बुरी नजर डालता है, फिर हीरो और विलन में युद्ध होता है और फिर वो हीरो विलन को मार डालता है। तो रामायण में वैसे ही है, राम सीता है, रावण है। पर वास्तव में ऐसे नहीं है कि वाल्मीकि ऋषि ने बॉलीवुड का मूवी देख के रामायण लिखा। वास्तव में भगवान भगवता में बताते हैं कि ये भौतिक जगत जो है ये आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब है। तो इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति कार्य करने का प्रयास करता है वो भगवान का ही अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान की लीला में एक रावण जो थे वो विलन थे, पर इस भौतिक जगत में लोग भगवान से स्वतंत्र होकर जब भोग करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे जो मूवी होते हैं उसमें हीरो हीरोइन विलन ये सब विलन होते हैं। क्यों ये सब विलन होते हैं? विलन का मतलब क्या है? जो स्वार्थी भाव से शोषण करके भोग करने का प्रयास करता है। तो इस भौतिक जगत में सब लोग जो है वो स्वार्थी हैं, भगवान को बाजू में रख के भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अधिकांश लोगों को रामायण महाभारत इनमें जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में पता नहीं है, इसीलिए वे भौतिक ऐसे मूवीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। पर रामायण में बहुत ही सुंदर कहानियां हैं और जो खास करके युद्धकांड जो युद्ध बताया गया है वो बहुत ही रोमांचक युद्ध है, और जो भी हमें मनोरंजन के लिए आकर्षण चाहिए वो सब रामलीला में भी है। तो हम खास करके प्रभु श्री रामचंद्र और हनुमान जी उनके कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब लंका में युद्ध चालू हो जाता है तो सबसे पहले रावण अपने कुछ सेनापतियों को भेजता, तुम जाके युद्ध करो, और जो वानर है वो सब उनके सैनिक उनके योद्धाओं को हरा देते हैं और एक के बाद एक सब हार जाते हैं। तो रावण बड़ा क्रोधित हो जाता है, सोचता है मुझे ही अभी रणभूमि में उतरना पड़ेगा, और रणभूमि में उतर युद्ध करने आ जाता है। और फिर वो सब वानरों पर ऐसे प्रहार करने लगता है कि एक एक तीर से कई वानरों का वध करने लगता है, इतने तेजी से शक्ति से तीर छोड़ रहा है। ये देख के सुग्रीव उन पर आक्रमण करने आते थे तो सुग्रीव को बेहोश कर देता है, फिर अंगद आते हैं और बाकी सब जो वानर आते हैं सबको बेहोश कर देता है। तभी हनुमान जी वहाँ पर आ जाते हैं, और जब हनुमान जी वहाँ पर आते हैं तो रावण जब हनुमान जी को देखता है तो देखता है यही वो वानर है, इसने मेरी लंका को जला दिया था, तो मैं अभी इसका विनाश कर दूंगा। तो हनुमान बोलते हैं कि हे रावण, तुम इतने निडर होके खड़े हो यहाँ पे, पर याद रखो कि तुम्हें जो वर मिला है कि तुम देवो गंधर्वो राक्षसो इन सबसे वध नहीं हो सकता, पर तुम्हें ऐसा वर नहीं है कि जानवरों के द्वारा तुम्हारा वध नहीं होगा, अभी मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो फिर वो रावण बोलता है हे वानर, बड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, देखिए देखते हैं तुम में कितनी शक्ति है, तो तुम प्रहार करो फिर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो हनुमान जी जब आते हैं तो वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी लेकर जोर से जो रावण है उसके सीने पे मारते हैं, तो रावण अपने रथ से पीछे गिर जाता है। और जब रावण पीछे गिर जाता है तो फिर जो आसमान में ऋषि है देवता है सब देख रहे वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और फिर रावण तुरंत अपना संतुलन बरकरार कर लेता है, कहता है वानर तुम्हारी शक्ति बड़ी तुलनीय है, अच्छी है तुम्हारी शक्ति, स्तुति के योग्य है, इतना तुमने प्रहार किया। तो हनुमान जी क्रोध आते हैं, बोलते हैं मेरी शक्ति निंदा के योग्य है क्योंकि तुम अभी तक जीवित हो। तो हनुमान जी पुनः प्रहार करने लगते हैं, तो रावण सोचता है कि ये कोई मामूली जानवर नहीं है, वापस प्रहार होगा तो क्या होगा पता नहीं, तुरंत वो अपनी गदा उठा लेते हैं और उसको रोक देते हैं। और फिर वो प्रहार करते हैं, हनुमान जी को तेज से मारते हैं सिर पे, तो हनुमान जी बाजू गिर जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, और फिर वो पुनः सब वानरों पे आक्रमण करने लगते हैं। तो तभी प्रभु श्री रामचंद्र सोचते हैं कि अभी समय आ गया है मुझे रावण का वध करने का। जब वो प्रभु श्री रामचंद्र रावण की ओर जा रहे होते हैं तो तभी लक्ष्मण आते हैं, और लक्ष्मण कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आप युद्ध करने का मौका दीजिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण को देखते हैं और कहते हैं जरूर बड़ा सावध रहो, यह बड़ा बड़ा धूर्त राक्षस है, शक्तिशाली भी है धूर्त, बड़ा सावध रहो आप। और फिर लक्ष्मण जाते हैं और रावण को चुनौती देते हैं, तो रावण कहते हैं, हे लक्ष्मण अच्छा हो गया तुम मेरे सामने आ गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, पहले तुम्हें मार डालूंगा फिर राम को मार डालूंगा मैं। तो लक्ष्मण कहने लग गए, बातें करना बड़ा आसान है, पहले कुछ कार्य करके दिखाओ। और फिर लक्ष्मण तीर मारने लगते हैं, रावण भी तीर मारने लगते हैं, और रावण सोचता है अभी जल्दी इसको खत्म कर दूंगा। साधारण तो क्या होता है, भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं उनको सदैव बहुत ज्यादा विश्वास होता है खुद में, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, बहुत होता है। तो रावण को लगता है अभी ये तो एक हाथ का खेल है, पर वो जो भी तीर मारता है सब तीरों का प्रतिकार कर देते हैं, उसको भी आक्रमण करने लगता है। तो रावण आश्चर्यचकित हो जाता है, ये क्या करे। फिर वो दैवीय अस्त्र का इस्तेमाल करने लगता है, लक्ष्मण भी हरेक दैवीय अस्त्र का प्रतिकार करते हैं, और फिर वह लक्ष्मण की शक्ति को देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर लक्ष्मण अपने प्रहार को बढ़ा देते हैं और वो घायल होने लगता है। फिर वो सोचता है कि ऐसे चलेगा नहीं, तो ब्रह्मा जी से उसको एक बड़े शक्तिशाली और तेज में भाला मिला होता है, तो वो भाला लेता है, मंत्र बोलता है, और फिर वो रावण वो भाला को तेजी से लक्ष्मण की ओर फेंकता है। तो लक्ष्मण अपने तीर से उसको मार रहे होते हैं, पर सब तीर गिर जाते हैं और वो भाला सीधा आकर लक्ष्मण के सीने में लग जाता है। लक्ष्मण के सीने में जब लग जाता है तो लक्ष्मण नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं, और रावण की धूर्त बुद्धि वो सोचता है कि मैंने पहले अभी सीता को गिरफ्तार कर लिया है, अभी लक्ष्मण को भी गिरफ्तार कर लूंगा तो फिर राम पूरा हतप्रभ हो जाएगा। तो इसीलिए वो तुरंत अपने रथ से उतर जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं और लक्ष्मण को उठा लेते हैं। तो अपने दो हाथ डाल देते हैं, सोचते उठा लोगे, तो हिला ही नहीं पाते उनको। और फिर वो अपने सारे 20 हाथ डालता है और सारा उठाने का प्रयास करता है, हिला भी नहीं सकता है वो, पूरा कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है मानो, पर वो इतना शक्तिशाली है कि उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया है, पर वो लक्ष्मण को उठा नहीं पा रहा है। और देख क्या हो रहा है, उसको पता नहीं है ये लक्ष्मण वास्तव में अनंत शेष है, और अनंत शेष सारे ब्रह्मांड को संभालते हैं, तो वो कैसे उठा पाएगा उनको। और फिर जब इस तरह से उठाने का प्रयास कर रहा है, भाई वो बड़ा शक्तिशाली है तो बाकी कोई वानर वहां पे आते भी नहीं है, पर जब ऐसे गुर्रा रहा है वो, तभी उससे जो हनुमान जी बेहोश हो गए थे वो उठ जाते हैं। जब हनुमान जी देखते हैं कि इस तरह से लक्ष्मण खतरे में है, तो जोर से वो चुनौती देते हैं, और जैसे ही आवाज सुनता है रावण थोड़ा डर जाता है और लक्ष्मण को नीचे रख देता है और तुरंत पीछे मुड़ता है। जैसे ही पीछे मुड़ता है, हनुमान जी अपने पूरे शक्ति से उसके सीने में प्रहार करते हैं, और जैसे ही प्रहार करते हैं इतना शक्तिशाली प्रहार होता है कि वो अपने मुंह नाक और कान से खून की उल्टी करने लगता है और पीछे गिर जाता है। और अभी हनुमान जी उस पर वापस प्रहार करने की जगह पर पहले सोचते कि लक्ष्मण को बचा लेना चाहिए, और फिर वो रावण अपने संतुलन वापस बाहर आई संतुलन में आ ही रहा है, क्या देखता है वो, हनुमान जी अपने दो हाथ लक्ष्मण के नीचे डालते हैं और उसको उठा के चले जाते हैं। क्या हो गया ये, मैं मेरे 20 हाथों से उठा नहीं पाया, अरे हनुमान ये वानर ये दो हाथों से उठा के चला गया, ऐसे कैसे हो गया। फिर सोचते मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मेरे पास कुछ शस्त्र भी है, दौड़ते हुए अपने रथ में चले जाते हैं, तुरंत अपना धनुष लेके वो प्रहार करने लगते हैं। तो हनुमान जी जो है वो लक्ष्मण को प्रभु श्री रामचंद्र के बाजू में ले जाते हैं। जो लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र जब देखते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो लक्ष्मण के सिर पे अपना हाथ रखते हैं, बोलते हे लक्ष्मण मुझे सीता जैसे पत्नी मिल सकती है शायद, पर शायद तुम्हारे जैसा भाई कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि तो सीता का तो एक तरह से कर्तव्य था मेरे साथ जंगल में आना, पर तुम जो जंगल में आए थे मेरे साथ वो अपने कर्तव्य के परे जाकर आए थे। तो जब ऐसे वो बात करते हैं तो लक्ष्मण होश में आ जाते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र फिर तभी लक्ष्मण को होश में आते हुए देखकर वो कहते हैं, वो धूर्त राक्षस तुम पे आक्रमण करके तुम्हें ऐसे घायल किया। और फिर वो बताते हैं क्या हुआ था, वो कहते हैं मैं ऐसा तुम पे प्रहार कभी सहन नहीं कर सकता, मैं आज उस राक्षस का वध कर दूंगा। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। ओके, जब वहाँ जब युद्ध हो रहा होता है तो लंका में उनका सबका रथ होता है, शस्त्र होते हैं, पर जो वानर होते हैं उनके पास कोई शस्त्र नहीं होते, वो तो पहाड़ उठाते हैं, पेड़ उठाते हैं, लकड़ियाँ उठाते हैं, और ना ही उनके पास कोई रथ होता है। तो हनुमान जी कहते हैं मैं आपका रथ बन जाता हूँ। फिर प्रभु श्री रामचंद्र उनके कंधे पर बैठ जाते हैं और फिर वो राम की ओर चले जाते हैं, रावण की ओर जाते हैं। जब रावण को चुनौती देते हैं तो रावण तुरंत देखता है, हाँ राम मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज मैं तुम्हें मौत की घाट में उतार दूंगा। श्री रामचंद्र बोलते हैं हे कायर, तुम वास्तव में ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, विश्व ऋषि के पुत्र हो, पर तुम जो राक्षस के कुल पे कलंक हो, तुम खुद को बहुत बड़ी योद्धा मानते हो, कोई योद्धा कभी छिपके किसी स्त्री का अपहरण नहीं करता है, तुम केवल एक कायर हो और तुम्हें आज मृत्यु का दंड मैं दूंगा। और फिर तुरंत भीषण युद्ध होने लगता है और रावण अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करता है, पर प्रभु श्री रामचंद्र सारे उनके शस्त्रों को प्रतिकार कर देते हैं। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र अपना प्रहार बढ़ा देते हैं। जब प्रहार बढ़ा देते हैं तो धीरे धीरे रावण घायल होने लगता है। फिर प्रभु इतना तेजी से तीर चलाते हैं कि रावण के जो रथ के ऊपर का झंडा तोड़ देते हैं, फिर उसके सिर पर जो मुकुट होता है वो मुकुट को उड़ा देते हैं, फिर उसके धनुष को तोड़ देते हैं, वो दूसरा धनुष लेने का प्रयास करते उसको भी तोड़ देते हैं, तीसरा धनुष लेने का प्रयास करते तीसरे को भी तोड़ देते हैं, तो उसके रथ ने जितने भी धनुष सब तोड़ देते हैं, फिर उसका जो कवच होता है कवच को तोड़ देते हैं। अभी अगले तीर से वो उसको वध भी कर सकते हैं। तभी प्रभु श्री रामचंद्र क्या करते हैं, धनुष को नीचे कर देते हैं, बोलते हैं हे रावण, आज तुमने बहुत वानरों से युद्ध किया था और उन सब वानरों से युद्ध करके तुम काफी थक गए हो, थके हुए शत्रु को मारने में कोई मजा नहीं है, तो आज तुम चले जाओ, कल आओ, कल मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो अभी जब इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं तो रावण पूरी तरह से पानी पानी हो जाता है अंदर से, क्रोधित भी हो गया है, लज्जित भी हो गया है, भयभीत भी हो गया है, क्या करे समझ भी नहीं आ रहा है। क्रोध तो आ रहा है कि इस तरह से कोई छोटा सा बालक है, तुम जाओ बाद में हम युद्ध करेंगे, ऐसे ऐसे भाव से उससे बोल रहे हैं, इसलिए क्रोधित है पर लज्जित है क्योंकि युद्ध करने के कुछ रहा ही नहीं अभी। और जब वो देखता है कि मैं जो भी शस्त्र इस्तेमाल किए कुछ भी नहीं हुआ उनसे, तो भयभीत भी हो गया है, अभी क्या करें। उसके सारथी की मृत्यु हो गई, घोड़े की मृत्यु हो गई, पहिए भी रथ के टूट गए, तो वो अपने रथ से उतर के दौड़ते दौड़ते चला जाता है। और जब सब राक्षस देखते हैं कि हमारे राजा दौड़ते दौड़ते चले गए, वो भी दौड़ते हुए चले जाते हैं, और सब वानर हंसते हंसते उनके पीछा करते कहाँ भाग रहे हो, आ जाओ अभी, तो कोई सुनता नहीं, सब चले जाते हैं अंदर। तो फिर बाद में प्रभु रामचंद्र आते हैं और वो लक्ष्मण और हनुमान जी से मिलते हैं, और हनुमान जी से कहते हैं कि वो रावण लक्ष्मण को उठा नहीं पाए, आप कैसे उठा लिया तुमने। बोलते हैं प्रभु आपकी कृपा से तो ये सारा जो ब्रह्मांड है वह उठ जाता है, तो आपकी कृपा हो गई तो मैं लक्ष्मण को क्यों नहीं उठा सकता, वो रावण के पास आपकी कृपा नहीं थी इसलिए उठा नहीं पाया। फिर जो हनुमान जी है वो भी एक तरह से हीरो है रामायण में, पर वो कैसे है, वो एक सेवक हीरो है और वो सेवा करते हुए बहुत ही दिव्य कार्य करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा में। और अभी रामायण में जो है प्रभु श्री रामचंद्र का जो प्रवेश होता है वो बालकांड से ही होता है, पर बालकांड के बाद में जो है अलग अलग कांड, अरण्य कांड है, उसके बाद में जो किष्किंध कांड में हनुमान जी का प्रवेश होता है, और उसमें भी हनुमान जी की जो भूमिका है थोड़ी सी है। तभी भूमिका क्या है, सबसे पहले जो भूमिका है कि वे प्रभु श्री रामचंद्र से मिलते हैं और उनको सुग्रीव से मिलाते हैं, और फिर बाद में जब सुग्रीव राजा बन जाता है तो फिर अपने कर्तव्य को भूल जाता है तो हनुमान जी उसको याद दिलाते हैं। और बाद में जब सुंदरकांड आता है तो सुंदरकांड में जो है जो पूरा हनुमान जी ही एक तरह से उसके हीरो है, और सुंदरकांड जो है उसमें क्या है, सुंदरकांड में प्रधान लीला हनुमान जी सीता माता की खोज में जाते हैं और पूरा दक्षिण भारत में खोज के फिर लंका में कूद के जाते हैं, लंका में ढूंढते हैं, फिर लौट के आते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र को संदेश देते हैं। तो ये सारी जो लीला है उसमें सुंदरकांड में, नाम सुंदरकांड है पर वास्तव में जो सौंदर्य के सागर है, सौंदर्य के स्रोत है प्रभु श्री रामचंद्र, वे अधिक सुंदरकांड में है ही नहीं। सुंदरकांड के शुरुआत में वे आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी को कि आप अभी जाओ, और अंत में जब हनुमान जी लौट के आते हैं तो वो उनको आलिंगन करते हैं प्रेम से। तो अगर सौंदर्य के ही स्रोत प्रभु श्री रामचंद्र नहीं है तो फिर उसको सुंदरकांड क्यों कहा गया है? तो इसका कारण ये है कि इस भौतिक जगत में जो सौंदर्य है वह क्या है? वह वास्तव में भक्तों का सौंदर्य है। तो यहाँ पे जो सीता माता जो है वो भगवान की महान सेविका, भार्या, भक्त है, और हनुमान जी वो महान भक्त है। तो ये दोनों कैसे मिलते हैं और दोनों कैसे भगवान की सेवा के लिए उतावले हैं, यह जो दिखने को मिलता है उसमें दिव्य सौंदर्य है। तो हम शायद भगवान का दर्शन अभी कर नहीं सकते हैं, पर अगर हम भक्तों के संग में आते हैं और भक्तों में भगवान की सेवा करने के उत्साह कैसे है यह देखते हैं, तो उसमें जो आनंद है वह दिव्य आनंद है। तो जब हनुमान जी को जब प्रभु श्री रामचंद्र आशीर्वाद देते हैं कि आप जाओ अभी, तो तभी सब माना जाने लगते हैं। तो नाम रामायण में सुंदर श्लोक है, आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। कपिवर संतत संस्मृत रामा, संतत संस्मृत रामा, तद्गति विघ्न ध्वंसक रामा, विघ्न ध्वंसक रामा। तो यहाँ पे जो प्रभु श्री रामचंद्र लीला करके चले गए, हमारे लिए क्या बचा है वह या इस श्लोक में बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी जब वानर जा रहे हैं, कपिवर जा रहे हैं, तो तभी वहां पे भगवान नहीं है, पर वो क्या करे, कपिवर संतत संस्मृत राम, सदैव भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और भगवान के स्मरण से क्या हो रहा है, तद्गति विघ्न ध्वंसक राम, कि उनकी जो गति में जो भी विघ्न आने वाले हैं सबको भगवान ध्वंस कर देते हैं, सबको निकाल देते हैं। तो यह वास्तव है भक्ति का रहस्य है। अगर भगवान का हम स्मरण करते हैं तो जो भी समस्याएं आती है वो समस्याएं चली जाती हैं, और हम भगवान की सेवा बड़ी अद्भुत पद्धति से कर सकते हैं। जब हनुमान जी जब जा रहे होते दक्षिण भारत में, तो तभी वो काफी समय तक ढूंढते हैं, अंगद भी उनके साथ है, जाम्बवन भी है, कहीं भी उन्हें कोई मिलता नहीं है, सीता कहाँ है ढूंढते जाते हैं। और बाद में सागर के तट पे पहुंच जाते हैं, और सागर इतना विशाल है और सागर के परे क्या है ये भी पता नहीं है, तो बड़े उदास हो जाते हैं। तभी एक बहुत विशाल पंछी होता है संपत्ति नाम का, वो बताता है हमको कि सीता उसके परे है। और फिर तभी क्या होता है, जो हनुमान जी इस समय तक उन्होंने कोई बहुत अद्भुत कार्य नहीं किया है, और तभी जो संपत्ति ऐसे कहते हैं तो कहते हैं कि ये सागर बहुत विशाल है, कौन इस सागर पर कूद के जाएगा? तो अंगद कहता है कि जो इतना विशाल जो अंतर है शायद मैं कूद के जा पाऊंगा, पर कूद पे जाऊंगा इतना थक जाऊंगा कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। ऐसा दूसरे वानर कहने लगते हैं कि मुझे जाना मुश्किल है। और जाम्बवंत कह रहे हैं कि मैं जब जवान था तो ये सागर क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड को एक पूरे पृथ्वी को एक बार कूद के आ सकता था मैं, पर अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फिर तभी हनुमान जी शांत बैठे होते हैं, और फिर तभी जाम्बवन उनके पास जाते हैं और वो कहते हैं, हे हनुमान तुम इस तरह शांत क्यों बैठे हो, तुम तो महाशक्तिशाली हो, तुम्हें इतने सारे आशीर्वाद मिले हैं, और ये सारे आशीर्वाद की जो उपयोग का आज से और उचित कोई मौका तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो क्या होता है, जो हनुमान जी जब बालक होते हैं तो उनको सब देवी देवताओं से बहुत वर मिले होते हैं, और वो छोटे बालक होते तो बड़े नटखट हो जाते हैं, तो नटखट होते तो क्या करते हैं, वो इतना ऋषिगणियों को इतना परेशान कर देते हैं कि वो एक बार एक ऋषि सुबह उठते हैं और वो सुबह प्रातः क्रिया के लिए जाने वाले होते हैं, तो जैसे ही अपने कुटिया के दरवाजे पे आते तो वहाँ पे उनको एक शेर दिखता है। शेर कहाँ से आ गया, उससे भी क्या करें। तो फिर अभी सुबह हो गई है, सुबह स्नान वगैरह करके फिर गायत्री करना है, तो सोचते हैं खिड़की से बाहर जाऊंगा। खिड़की को जाते तो वहाँ पर उनको क्या दिखता है, गिधड़ दिखता है वहाँ पे। तो ये कहाँ से आ गया, और फिर पीछे होते छोटे हनुमान देख के बैठ के हंस रहे होते वो ऋषि के भाव को देख कर। तो जब ऋषि ऐसे देखते हैं, उठते हैं, ये बहुत अच्छा बालक है पर अभी बहुत नटखट है, तो क्या करते हैं उनको शाप दे देते हैं, कहते हैं तुम अपनी सारी शक्ति को भूल जाओ और जब तुम्हें कोई अपनी शक्ति का याद दिलाएगा तभी तुम्हें वापस स्मृति होगी। तो क्या होता है, अभी तक हनुमान जी भूल गए हैं पर भी जाम्बवान उनको अपनी शक्ति की स्मृति दिलाते हैं। और फिर जो वास्तव में रामायण में से बताया गया है कि जैसे हनुमान जी भी शांत होकर उदास बैठे हैं पर जैसे जाम्बवान उनको बता रहे हैं उनकी शक्ति के बारे में और भगवान की सेवा के मौका के बारे में, तो क्या हो रहा है हनुमान जी की जो शरीर है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जाम्बवान आंखें बंद करके हनुमान जी उनको महिमा बता रहे हैं और फिर आंखें खोलते हैं तो हनुमान जी है ही नहीं, सिर्फ हनुमान जी का पैर है और हनुमान जी ऊंचे हो गए वहां पे। तो वहां पे वास्तव में क्या बताया गया है कि यहाँ पे जाम्बवान एक गुरु की भूमिका निभाते हैं और हम सब है आत्मा है और हम सब जो आत्मा है उसमें बहुत शक्ति है पर हम हमारी आध्यात्मिक शक्ति को भूल गए हैं। कोई भी भौतिक आसक्ति आत्मा को बंधन में नहीं डाल सकती है पर हम हमारी शक्ति को भूल जाते हैं। पर जब हम गुरुदेव से वैष्णवों से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो क्या होता है हमारी आध्यात्मिक वृद्धि और पुष्टि होती है। फिर उसके बाद में हम भगवान की सेवा में बहुत कुछ कर सकते हैं और यही हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो पहले पहले जो लोग आए थे उनके पास वो सब हिप्पी जैसे थे, हिप्पी मतलब वो नशा करते थे, सब बुरी आदतें थी और ऐसे लोग प्रभुपाद जी के पास आ गए पर प्रभुपाद जी ने उनको कीर्तन सिखाया, उनको भगवद्गीता के श्लोक बताए, तत्वज्ञान बताया और वही लोग कुछ ही समय में इतने परिवर्तित हो गए कि वे सारे विश्व भर में जाके आध्यात्मिक संदेश का प्रचार करने लग गए। और प्रभुपाद जी ने जो प्रचार किया वो अकेले नहीं किया, बहुत से लोगों को साथ दिया, उन्हें सबको प्रेरणा दी। पर जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रभुपाद जी ने किया ये विश्व के इतिहास में अलौकिक है। प्रभुपाद जी सिर्फ 11 साल के लिए थे, 11 साल में 14 बार सारे पृथ्वी का भ्रमण किया और बहुत से रईस लोग हैं वो भ्रमण करते हैं पर भ्रमण करते हैं उसमें क्या होता है सिर्फ अपना पैसा खर्च करते हैं और कुछ होता नहीं। पर प्रभुपाद जी ने भ्रमण किया उससे क्या किया सारे विश्व पर लाखों लाखों लोगों को परिवर्तित किया, 108 मंदिर बनाए, 70 ग्रंथ लिखे उन्होंने और हजारों हजारों की मात्रा में लोग भक्त बन गए। और जब प्रभुपाद जी के शिष्य दूसरे प्रभुपाद जी बोला करते थे कि आप इस देश में जाओ और प्रचार करो और उसके शिष्य वहाँ पे आते थे और प्रचार चालू कर देते थे, कुछ ही समय में बहुत से मंदिर वहाँ पे बन जाते थे। क्यों? क्योंकि जब श्रवण कीर्तन होता है तो उससे एक दिव्य शक्ति मिलती है। तो इस प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद जी रशिया में गए प्रचार करने को तो सिर्फ 5 दिन रशिया में रहे। प्रभुपाद जी 1970 में भगवद्धाम चले गए, उसके लिए 5 दिन रशिया में थे पर आज रशिया में और रशिया के आजूबाजू जो देश है यूक्रेन वगैरह उसमें इतने कृष्ण भक्त है कि वास्तव में जब वहाँ पे कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। तो इस्कॉन का अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर जो है मायापुर में है तो साधारण तो क्या होता है मायापुर में जब हर साल जब गौरमंडल परिक्रमा होती है तो 2 विभाग हुआ करते थे कि भारतीय भक्त और अंतर्राष्ट्रीय भक्त। तो भारतीय भक्तों के लिए हिंदी में प्रवचन हुआ करते, अंतर्राष्ट्रीय भक्तों के अंग्रेजी में। पर पिछले 10-12 सालों से 3 विभाग होते हैं, भारतीय भक्त, अंतर्राष्ट्रीय भक्त और रशियन भक्त, क्योंकि रशिया में इतने भक्त हैं। तो जो एक बड़ा मैगजीन है न्यूज़वीक उसमें बताया कि जो कम्युनिज्म गिर गया उसके बाद में जो हरे कृष्णा के जो भक्त की संख्या ऐसा उन्नति हो रही है रशिया में कि मानो ये कोई आग है फैल रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि भक्त अगर श्रवण कीर्तन करते हैं अच्छी तरह से तो उनको प्रेरणा मिलती है, दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तो भक्ति का मतलब ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ बैठ के आप जप करो और कुछ मत करो। प्रभुपाद जी बोला करते भक्ति मतलब भक्तिमय सेवा और हनुमान जी इसके वो प्रधान लक्षण है। ओके, प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया कि कई बार लोग अगर भक्ति करते हैं तो वो निकम्मे हो जाते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले अगर आपकी ये धारणा है तो भक्ति क्या है ये आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप देखो हनुमान जी कैसे भक्त हैं, वो कितनी सेवा करते हैं भगवान के पूरे, और ऐसे अप्रतिम कार्य करते हैं, अद्वितीय कार्य करते हैं, और यह भक्ति के आदर्श है। तो जब हनुमान जी लंका में जाके लौट के आते हैं तो तभी वे ऐसा पराक्रम करते हैं। सबसे पहले सीता को ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है, पर सीता को ढूंढते हैं, और सीता को उस समय प्रभु श्री रामचंद्र के सेवक और प्रभु श्री रामचंद्र की भार्या, उनका जो मिलन है और उनमें जो प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में चर्चा होती है, उनकी गुणगान होता है, वो बहुत ही सुंदर है। और तभी तो सीता देवी अपना जो चूड़ामणि है वो हनुमान जी को देती है। हनुमान जी कहते हैं कि कृपया मुझे आप ऐसे कुछ दीजिए ताकि मैं प्रभु श्री रामचंद्र को दे सकूँ। और फिर वो क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं। और जब जा रहे होते हैं तो सोचते हैं कि रावण को थोड़ा हमको सबक सिखाना चाहिए, तो क्या करते हैं, वो लंका को पूरा दहन कर देते हैं। और फिर वो उड़ते हुए प्रभु श्री रामचंद्र के पास आते हैं, कृत चूड़ामणि दर्शन रामा, तो कहते क्या होता है, वो सीता माता के चूड़ामणि का दर्शन करते हैं, बड़े भाव विभोर जाते हैं वो। और फिर जब उनको पूछते हैं तो हनुमान जी पूरी कहानी बताते हैं, कपिवर वचनाश्वासित रामा, कपिवर जो हनुमान जी उनके वचन से वो आश्वस्त हो जाते हैं। और जब वो पूरे हनुमान की प्रतापों की कहानी सुनते हैं वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र सोचते हैं मैं ये हनुमान जी को क्या भेंट दूंगा, अभी उन्हें ऐसी सेवा की है कि मैं क्या भेंट दूं, मेरे पास सर्वोत्कृष्ट चीज़ जो भी दूंगा वो भी भेंट के लिए कमी है। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, हनुमान जी कहते हैं कि हे मैं तो अभी जंगल में हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो मैं आपको एक ही चीज़ दे दूंगा, मैं मेरा आलिंगन आपको देता हूँ। तो एक महान श्री वैष्णव आचार्य है गोविंद राज, वो अपने भाष्य में रामायण के भाष्य में कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र सोच रहे हैं कि मैं ये हनुमान जी ने ऐसी सेवा की है, मैं उनको क्या दे सकता हूँ, मेरी तो इच्छा है कि सारे पृथ्वी सारे ब्रह्मांड के जो ऐश्वर्य उनको दे दूँ, पर ये हनुमान जी जो शुद्ध भक्त है वो इनको ये ऐश्वर्य क्या ले देना है, ये क्या करेगा इस ऐश्वर्य से, वे स्वीकार नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं वो कहानी बाद में होती है, जब पटाभिषेक हो जाता है तो सीता माता सोचती है, हनुमान जी वहाँ बैठे होते हैं, सीता माता सोचती है कि हनुमान जी को कुछ भेंट देना चाहिए। तो तभी वो एक राजा के ईश कुलानुग्रह कर रामा, एक राजा के राज्य आते हैं, राज्य के राजा आते हैं और एक सुंदर मणियों की माला प्रभु श्री रामचंद्र को देते हैं और रामचंद्र सीता देवी को देते हैं। सीता देवी सोचती है कि यह मैं हनुमान जी को दूंगा, और वो प्रभु श्री रामचंद्र की ओर देखती है, प्रभु श्री रामचंद्र समझ जाते हैं कि हाँ कहते हैं वो, तो हनुमान जी को बुलाते हैं। हनुमान जी को जब बुलाते हैं तो क्या होता है, हनुमान जी को वो मालाओं के रत्नों की माला दे देते हैं। तभी क्या होता है, ये वानरों का रूप जो होता है वो बंदरों जैसे है, तो वानरों ने बहुत कुछ सेवा की होती है पर अयोध्या वासियों ने वानरों की सेवा नहीं देखी होती है। तो सोचते हैं कि ये राम जंगल में चले गए, ये वानरों से उन्होंने मैत्री क्यों कर बैठे। और फिर वो सोचते हैं ये वानर को ऐसा बड़ा रत्नों का हार क्यों दिया, और वानर करेगा क्या उससे। फिर हनुमान जी अपनी जगह पर जाके बैठते हैं और वो क्या करते हैं, वो बड़े हीरो को लेते दबाते, हीरा टूट जाता है, उन्हें फेंक देते हैं। और जैसे वो अयोध्या के जो मंत्री होते हैं वो सोचते हैं जैसे हीरा टूट रहा है उनका हृदय टूट रहा है, बाप रे बड़ा इतना महंगा हीरा इसको तोड़ रहे, एक हीरा तोड़ देते, दूसरा हीरा तोड़ देते, तीसरा हीरा तोड़ देते, तो पूरा हीरो की माला वो तोड़ रहे हैं। तभी वो अयोध्या के वासी थे वो सहन नहीं कर पाते, तो प्रभु श्री रामचंद्र देखते हैं क्या हो रहा है, प्रभु श्री रामचंद्र समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो फिर वो उनसे कहते हैं, तो वो जो अयोध्यावासी प्रभु श्री रामचंद्र को देखते हैं क्या हो रहा है ये से बोलते, तो फिर पूछो उनको आप, तो वो हनुमान जी से जाके पूछते हैं, तो हनुमान जी से जाके पूछते हैं ये हीरे है इतने मौल्यवान है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे जो लोग होते हैं वो दरबार में आते, वास्तव में अयोध्या के भक्त नहीं होते हैं वो, बाकी सब लोग वहाँ पे जो होते हैं वो सब कुछ बात करें, बंदर ही है, बंदर को हीरे की कीमत क्या समझेगी। तो ऐसी बात कर रहे हैं, पूछते अरे तुम ये हीरे तोड़ क्यों रहे हो, तो हनुमान जी कहते हैं वास्तव में मेरे लिए असली हीरे जो है वह है मेरे स्वामी सीताराम, तो मैं देख रहा हूँ इन हीरों में कहीं सीताराम है क्या, अगर सीताराम नहीं है हीरों में तो हीरो की क्या कीमत है मुझे, इसीलिए मैं इनको फेंक रहा हूँ। तो जब ये उत्तर सुनते हैं तो कुछ लोग बड़े आश्चर्य, कितने महान भक्त है। पर ये जो व्यक्ति पूछ रहे होते हैं, अच्छा तुम हर जगह सीताराम को देखते हो, तो क्या तुम्हारे तुम्हारे हृदय में भी सीताराम है? हाँ बेशक। और फिर वो क्या देखते, तो दिखाओ। तो तुरंत अपने सीने को फाड़ देते हैं, और सीने में फाड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें उनको सीताराम दिखते हैं। और देख पहले देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और फिर वो जब देखते हैं तो देखते हैं कि उनके हृदय में सीताराम है, और बाद में देखते हैं कि वहाँ पर जो राम है उनके हृदय में हनुमान है, और वो जो राम के हृदय में हनुमान है उनके उदय में पूरा राम है। तो वो देख के साधवम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तदहम मदन्यतेन जानाति नाहम तेभ्यो मनागपि। भागवतम में बताया गया है कि एक साधु के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान के हृदय में साधु रहते हैं। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र ये सब लीला क्यों होने देते हैं, वो जानते हैं कि हनुमान जी को हीरे नहीं चाहिए, और सीता देवी भी जानती है कि हनुमान जी को हीरे नहीं चाहिए, पर वो सिर्फ अपना स्नेह अपना कृतज्ञता हनुमान जी को दिखाना चाहते हैं। पर प्रभु श्री रामचंद्र क्या दिखाना चाहते हैं कि जो लोग ये हीरो को इतना मूल्यवान समझते हैं उनको दिखाना कि हनुमान जी के मूल्य क्या है। हनुमान जी हीरे से और अधिक मूल्यवान जो चीज़ है वो जानते हैं। फिर प्रभु श्री राम स्वयं उठ जाते हैं और आके वे हनुमान जी को आलिंगन करने लग जाते हैं, और जैसे ही हनुमान जी का सीना जो है प्रभु श्री रामचंद्र के सीने से स्पर्श कर जा रहा है, तो जो उनका सीना फट गया है तुरंत ठीक हो जाता है। और तभी प्रभु श्री रामचंद्र आलिंगन करते हैं, उनसे कहते हैं कि हे राम हे हनुमान, जो तुमने सेवा की है वो अद्वितीय है। तो ये मैं लीला इसलिए बता रहा था कि हनुमान जी को कोई भी भौतिक चीज़ नहीं चाहिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र सोच रहे हैं मैं हनुमान जी को क्या भेंट दूँ। तो सोचते हैं कि मेरे भक्त सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, और वो एक चीज़ क्या है, वो चाहते हैं उनके लिए जो मेरा रूप है वही उनका सबसे बड़ा खजाना है। मेरे रूप का दर्शन करना, मेरे रूप का स्मरण करना, यही उनके लिए परम परम श्रेय है। श्रेय से उनके लिए परम, उनके लिए यही प्राप्ति है। तो यह जो रूप है, जिस रूप पे लक्ष्मी देवी अपना आश्रय प्राप्त करती है, मैं ये जो सर्वश्रेष्ठ सर्व मौल्यवान रूप है यह मैं हनुमान जी को प्रदान कर रहा हूँ। और ये सोच के वो हनुमान जी को आलिंगन करते हैं, और हनुमान जी स्वीकार करते उनके आलिंगन कृतज्ञ भाव से। तो वास्तव में जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमारी सेवा स्वीकार करके हमें उनका प्रेम प्रदान करते हैं, और उस प्रेम से सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति होती है। और यही हनुमान जी अपने लीला से दिखाते हैं। और एक और लीला है सुंदर हनुमान जी के बारे में, तो उस पर हम अंत में आएंगे। पर ये जो रामायण की कहानियाँ हैं और रामायण की लीला है, ये भारतीय संस्कृति में हजारों हजारों सालों से इतने लोकप्रिय है। और रामनवमी के उत्सव में, दशरथ के विजयादशमी या दशहरा के उत्सव में बहुत विशाल मात्रा में उत्सव होते हैं। जो उत्सव होते हैं उनको तीन प्रकार से होते हैं, एक होते हैं पाठ, दूसरी होती है कथा, और तीसरी होती है लीला। पाठ मतलब क्या, जो रामायण है उसको वैसे के वैसे पढ़ना, तो भी एक प्रकार से व्रत कहा जाता है कि अगर रामनवमी आ रही है तो संपूर्ण रामायण पढ़ के निकालो, इसको पाठ कहते हैं। कथा मतलब रामायण के कुछ श्लोक लेना, कुछ लीला लेना और उस पर चर्चा करके विश्लेषण करना। और लीला या रामलीला उसको कहते हैं। लीला मतलब क्या, उन्हीं जो रामलीला है उनका नाट्य करना, और नाट्य करके जो लोगों को उनको मनो उनको चित्तरंजन कराना, उनके चित्त को उद्धार को ऊँचा उठाना। जैसे अभी छोटी बालिकाओं ने इतनी सुंदर लीलाएँ सुनते सुंदर नाटिका की थी जो प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म की। तो इस तरह से हजारों सालों से ये लीलाएँ चलती आ रही है, और लीलाओं का स्मरण, लीलाओं का कीर्तन, ये जो है यह परम शुद्ध करने वाला है। तो रामायण में श्लोक आता है कि रामायण के सुनने के, श्रवण करने के, दर्शन करने की उसकी लीलाओं का उसका क्या महिमा है। तो कहते हैं, आप कृपया श्लोक में पीछे दोहराइए, च चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकैकक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। तो चरितम रघुनाथस्य, ऋषि रामचंद्र का जो चरित्र है, और शतकोटि प्रविस्तरम, हजारों हजारों श्लोक है उसमें, और एक एक अक्षर जो है उसमें का उस क्या शक्ति है, महापातक नाशनम, बड़े बड़े पाप है उनका नाश होता है इससे। तो श्री प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि कृष्ण भावनावृत आंदोलन वो बना रहे हैं, इससे क्या करें, हम ये संस्कृति को पुनः जागृत करें, पुनः सबके लिए इस संस्कृति के द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि से मनोरंजन हो जाए, चित्तरंजन हो जाए। और यही आप सब बेलगांव के भक्त बड़े सुंदर पद्धति से यहाँ पे आप सब ये कर रहे हैं, ये देख के प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत आशीर्वाद प्रभुपाद जी के हम सबको प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र हजारों साल पहले आके तो चले गए, पर उन्होंने उनकी लीलाएँ हमें दी है, उनकी लीलाएँ दी है और ख़ास करके उनका नाम हमें दिया है, और उनके नाम की जो शक्ति है वो नाम की शक्ति के द्वारा हम हर तरह से भगवान के सानिध्य, भगवान की शक्ति, भगवान के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। तो तभी तो रामायण में भी प्रभु श्री राम की लीलाओं का बड़ा वर्णन आता है। तो जब हनुमान जी सोच रहे थे मैं इस बड़े सागर पे पार हो पाऊंगा कि नहीं, संपत्ति होते हैं वो बताते हैं कि राम का नाम का आश्रय ग्रहण करने से जो भक्त है भव सागर के पार जा सकता है। तो ये छोटा सा सागर क्या बड़ी बात है। तो हनुमान जी सोचते हैं हाँ, तो वो राम 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 के नाम की शक्ति से वो सागर पार करके चले जाते हैं। और फिर उसके बाद में जब पर्वत जब उनको सेतु बनाना होता है, तो तभी क्या होता है, सेतु जब बना रहे होते हैं तो वो सोचते हैं सेतु बनाएंगे कैसे, पहले अगर हम पत्थर डालेंगे तो पत्थर डूब जाएंगे। पर प्रभु श्री रामचंद्र ऐसे सोच रहे हैं, पर वो देखते हैं कि ये सब वानर है, वो पत्थर लाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, हनुमान जी वो पत्थर पे राम लिखते हैं और फिर वो वहाँ पे पत्थर डालते हैं और पत्थर तैरता है, दूसरा पत्थर लाते हैं वो भी तैरता है। प्रभु श्री रामचंद्र देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते हैं ये हनुमान पत्थर डाल रहे हैं वो तैर रहा है, मैं पत्थर डालूंगा तो तैरेगा या नहीं। तो सोचते हैं कि अगर तैरेगा नहीं तो क्या होगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो इसीलिए मैं अकेले में रात को आऊँगा, बाकी सब वानर सो रहे होंगे, तभी आके मैं देखूंगा कि तैरता है कि नहीं। तो रात को जब सो जाते हैं सब, तो प्रभु श्री रामचंद्र भी सोने का नाटक करते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर आते हैं चुप 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 के आते हैं और फिर वो पत्थर उठाते हैं, पत्थर उठा के और डालते हैं सागर में, वो डूब जाता है। बड़े आश्चर्य से उधर देख लेते, कोई है क्या, जरूर कोई होता है, कौन होता है, हनुमान जी। तो हनुमान जी, हनुमान तुम्हें देखा क्या हुआ, वो कैसे नहीं देखूंगा मैं, मेरी आंखें हमेशा आप पे ही रहती है। तो प्रभुश्रीराम शर्मिंदा हो जाते, बोलते जो हुआ किसी को बताना मत, ये मैं तो सारी दुनिया को बताऊंगा ये। तो रामचंद्र बोलते अरे तुम मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो इस तरह से। हनुमान जी हंसने लगते हैं, फिर हाथ जोड़ के वो प्रभु श्री रामचंद्र के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु जो आपकी लीला कर रहे हैं ये, वह आपकी शक्ति के द्वारा तो सारे बड़े बड़े ग्रह आसमान में तैर रहे हैं, तो आपको वास्तव में एक पत्थर को तैरना आना क्या बड़ी मुश्किल बात है, पर आप हमें सिखा रहे हैं कि अगर आपके नाम का आश्रय ग्रहण हो जाए तो पत्थर भी तैरने लगता है, पर अगर आप किसी को छोड़ दोगे तो उसके लिए क्या आशा है। तो वो कहते हैं मैं यह कहानी सबको बताऊंगा कि आपके नाम की महिमा क्या है, कि आप प्रभु आपसे बढ़कर आपका नाम है। क्यों आपसे बढ़कर आपका नाम है, क्योंकि आप जहां नहीं होंगे वहां पे भी आपका नाम है, जो आपके ना आपका आश्रय ग्रहण नहीं कर पाएगा, जो आपका दर्शन नहीं कर सकता है, वो भी आपके नाम का आश्रय ग्रहण कर सकता है, और आपके नाम के आश्रय के द्वारा वह हर तरह से कल्याण प्राप्त कर सकता है। तो यह इस आपके नाम की महिमा उसका मैं गुणगान हर जगह पे करूँगा, इस तरह से जब हनुमान जी बोलते हैं तो ऋषि रामचंद्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आलिंगन कर लेते हैं वो। तो जो हनुमान जी है ऐसे बताता है कि जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र का गुणगान होता है तो स्वयं वहाँ पे विद्यमान हो जाते हैं। वो प्रभु श्री रामचंद्र के गुणगान सुन के उनके आँखों से आंसू आते हैं कि रोम खड़े हो जाते हैं। तो प्रभु श्री राम का जो नाम है वही हमें कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन के द्वारा वास्तव में हम सब भगवान से हमारा संबंध जोड़ सकते हैं और संबंध जोड़ के जो अंतरंग संतुष्टि शांति और संतुष्टि जो है वो हम सब प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र इस जगत में आते हैं इसलिए नहीं कि कुछ समय के लीला करके चले जाए, वो इसलिए आते हैं कि हमारे हृदय को आकर्षित कर सके। तो आज ऋषि रामनवमी का जो अवसर है तो इसमें हम सब प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। वास्तव में भगवान हमारे हृदय में सदैव है, तो प्रकट होने का मतलब क्या है, वो हमारे हृदय में है पर हम उनके अस्तित्व को महसूस नहीं करते हैं। तो अगर हम भक्तिमय भाव से उनकी प्रार्थना करते हैं तो हमारी चेतना की वृद्धि हो जाएगी और फिर हम उनको हमारे हृदय में महसूस कर सकते हैं। और जब वे परम राजा है उनको हमारे हृदय में महसूस कर सकते हैं तो हम भी जो हनुमान के रूप में उनके महान उनके सेवा में महान कार्य हम कर सकते हैं। तो हम एक और प्रार्थना है जो यही प्रार्थना है कि कैसे प्रभु श्री रामचंद्र ही हमारे सर्वस्व है, तो वो प्रार्थना हम बोल के प्रवचन को विराम देंगे। तो मैं प्रार्थना पहले बोलता हूँ फिर आप मेरे पीछे दोहराइए। माता मे रामो मत पिता रामचंद्र माता मे रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी मे रामो मत सखा रामचंद्र स्वामी मे रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ये प्रार्थना बताया जा रहा है कि हे प्रभु श्री रामचंद्र आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो और आपके बिना मेरा कोई आश्रय नहीं, आपके बिना कोई भी आश्रय मैं जानता नहीं हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की श्री राम नवमी महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की गौर भक्तवृंद की पिताय गौर प्रेमानंदे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो अभी बच्चों के द्वारा एक छोटी सी नाट्य लीला रामचंद्र जी के लीलाओं से है, तो आप सबसे विनती है कृपया ध्यान से शांति से बैठ